ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये नए कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। ब्यूरो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बारे में आवश्यक तकनीकी सहयोग भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में संविधान और देश की लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास दोहराने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया है। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का आम चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। इसमें 65 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया। उन्होंने निर्वाचन आयोग और मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को इसके लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले महीने पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं। उन्होंने खेलों के लिए भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए विशेष अभियान एक पेड़ मां के नाम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से संस्कृत बुलेटिन प्रसारण के 50 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई भी दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल सानी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कतर के अमीर और प्रधानमंत्री अल सानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस रणवीर ऑपरेशनल तैनाती के लिए बांग्लादेश के चट्टोग्राम पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बांग्लादेशी नौसेना ने आईएनएस रणवीर का गर्मजोशी से स्वागत किया। जहाज आईएनएस रणवीर की यात्रा इसी वर्ष 21-22 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना की भारत की राजकीय यात्रा के ठीक बाद शुरू हुई थी। भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से एक घरेलू कंपनी की शिकायत के बाद ग्लास फाइबर आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इस मामले की पुष्टि होने पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जा सकता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय DGTR ने शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पाद की डंपिंग के संबंध में यह जांच शुरू की है। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य के 12 जिलों में 2,62,000 से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दो स्थानों पर ब्रह्मपुत्र समेत 5 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गंभीर रूप से प्रभावित अपने लोकसभा क्षेत्र डिब्रूगढ़ में स्थिति की समीक्षा की। वहीं अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है। प्रदेश में बारिश से हुए भूस्खलन के कारण कई अंदरूनी इलाकों से सड़क कट जाने की खबर है। लोहित जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे या निचले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन में पश्चिमोत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बुधवार तक तेज बारिश हो सकती है। बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 3 से 4 दिन तक लगातार वर्षा का अनुमान है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ICC 2020 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान असाधारण प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को इस असाधारण उपलब्धि पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।